पर देख सकते हैं और अब iOS टीवी रोकू ऐप पर भी दस्तयाब है। आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घरवाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है। मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से। मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 4164278655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है। फोन कीजिए 4164278655 सैयद आसिफ रजा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आदाब सब सुनने वालों को। सामाइन, हर बुध को आप प्रोग्राम सुनते हैं सैयद आसिफ रजा का। मुझसे राबते का नंबर है 4164278655 और हमारी कोशिश ये होती है कि आपको मॉर्गेज और रियल इस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके कानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जाए। सामिन, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि और उसके साथ साथ आपको जैसा कि पता है कि हमारा प्रोग्राम बेस करता है जैसे भी साल में अयाम होते हैं, ख़ास तौर पर रिलीजियस या कोई अवामी दिन हुआ तो उसके हिसाब से हम प्रोग्राम तरतीब देते हैं, क्योंकि ये महीना मुहर्रम का चल रहा है। तो आपने पिछले दो प्रोग्राम मुहर्रम के हवाले से सुने होंगे और अगले दो प्रोग्राम भी मुहर्रम के हवाले से ही रहेंगे, उसको तकद्दस को बरकरार रखते हुए। रमज़ान जैसे होता है, रमज़ान हो गया, रबी अव्वल हो गया, इसी तरह से हम मुहर्रम का भी तकद्दस बरकरार रखते हुए प्रोग्राम पेश करते हैं। आज हम एक मौलाना हज़रात को भी आपके साथ गुफ्तगू कराएंगे। अगर आपके कोई सवाल जवाब मुहर्रम के हवाले से हों, वो भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 4164278655। और उसके अलावा आपके साथ हम कुछ कसीदे और नात वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे। आइए एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उसमें हम आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट क्या चल रही है रियल इस्टेट और मॉर्गेज के हवाले से।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घरवाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है। मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से। मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 4164278655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है। फोन कीजिए 4164278655 सैयद आसिफ रजा।
जी सवाइन, जैसा कि आपको पता है कि बैंक ऑफ कनाडा ने प्राइम रेट अभी नहीं बढ़ाया, जो तवक्को बहुत ज़्यादा है कि प्राइम रेट को गिराया जाएगा 0.25%। इस वक्त प्राइम रेट जो है वो 3.95 है और 6 महीने, 2 साल के, 3 साल के और 5 साल के रेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके अलावा जो फिक्स रेट्स हैं उनमें कुछ लेंडर्स में देखने में आ रही है कि थोड़ा सा वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी फिक्स रेट आपको बहुत अच्छा बढ़िया मिल सकता है 2.69, 5 साल का फिक्स रेट। और प्राइम रेट जो है 3.95 है अगर फिक्स रेट आपको चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि अभी भी आपको मिल सकता है 2.69। और जो प्राइम रेट है वो है 1% बिलो प्राइम, यानी आपका रेट हो जाएगा 2.90। ज़्यादातर लोग यही सवाल करते हैं कि हम फिक्स लें कि वेरिएबल लें, तो उनके लिए मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि फिक्स लेने में आपको फ़ायदा बस एक ही रहेगा कि आपको पता है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं ऊपर नीचे जाएगी जैसे वेरिएबल के अंदर होता है, 5 साल तक फिक्स रहेगी। अच्छा, अब एक और सवाल इस ज़िम्मे में आता है कि अगर हम फिक्स ले लें 2.69, देखिए अगर 2.69 आप ले लेते हैं और रेट अगर नीचे गिरता है और मज़ीद, लेट से फिक्स रेट हो जाता है 2.25, जो बहुत ही कम तवक्को है कि इतना नीचे चला जाएगा 5 साल का फिक्स रेट, और 2-3 साल बाद आपको ज़रूरत आन पड़ती है पैसे की और आप तोड़वाने की कोशिश करते हैं अपने मॉर्गेज को कि पैसे निकालने हैं, तो जो एक खौफ और डर होता है लोगों के दिमागों में कि हमें इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल IRD बहुत बड़ी पड़ेगी, तो वो ऐसा नहीं है। फिक्स रेट के अंदर IRD जो है, अगर आप 2.69 लेते हैं और रेट बढ़ जाता है 2 साल बाद, लेट से 2 साल बाद रेट हो जाता है 3.25, तो आपको 3 महीने की इंटरेस्ट पेमेंट ही पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल नहीं देना होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सुनने वालों के लिए क्योंकि उनके जहन में यही रहता है कि रेट बढ़ जाएगा तो हमें IRD देनी पड़ेगी, और सॉरी अगर हम तोड़ेंगे फिक्स रेट पे. हाँ, अगर आपका रेट हाई हो, यानी अगर आपको मिला हो 3.25 या 4% और रेट गिर के 2.69 आ गया हो, तब आप तोड़ेंगे तो फिर आपको IRD देनी होती है, जो अच्छी खासी होती है 10-15 हज़ार. लेकिन जब आपका रेट ही कम है 2.69 भैया, और दो साल बाद आप देखते हैं कि रेट फिक्स रेट चला गया 3% 3.5 से तजावुज़ कर गया है, तो भैया आपको जो है वो IRD नहीं लगेगी, 3% 3 मंथ्स की इंटरेस्ट पेमेंट ही लगेगी, क्योंकि रेट बढ़ गया है, रेट गिरा नहीं है. अगर गिर जाएगा तो फिर IRD लग सकती है, जो बहुत कम तवक्को है कि इससे भी नीचे अपकमिंग जाएगा फिक्स रेट. वेरिएबल रेट नीचे जा सकते हैं मज़ीद, क्योंकि जैसे अभी देखने में आ रहा है कि 1 से 2 दफ़ा रेट को गिराया जाएगा, और ख़ास तौर पे जब तक इलेक्शन नहीं हो रहे. मैं समझ रहा हूँ कि, और मैं क्या समझ रहा हूँ कि हम ये समझ रहे हैं यानी कि जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, कि ये जो रेट है वेरिएबल रेट जो है वो 2 दफ़ा शायद गिरे इस हुकूमत को रहते हुए, ताकि इलेक्शन से पहले पहले. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सैयद आसिफ रज़ा का कारोबारी दुनिया के हवाले से. मुझसे रबते का नंबर है 416-427-8655. अगर आपके घर की रिनूअल आ गई है तो मैं समझता हूँ कि आप पहले उसको रिन्यू कराने से पहले उसको मार्केट को देख लें. और यहाँ पे भी मैं आपको एक मशवरा दे दूँ, अगर आपका रिनूअल बहुत अच्छा रेट आपको दे रहा है और आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, तो भैया 2-3.05 के चक्कर में आप अपने रेट को ना चेंज कराएं. क्योंकि अगर इंटरलेस आपका बहुत बड़ा मॉर्गेज है, यानी 1 मिलियन का या 950,000 का, अगर 2-3 लाख रुपल्ली का है, डॉलर का है, तो उसमें आपको, क्योंकि फिर अप्रेजल फीस होती है, दूसरी चीज़ें होती हैं, लीगल होता है. अगर सिंपल स्विच है तो ठीक है, लेकिन रीफाइनेंस करेंगे, हो सकता है आपको वही लेंडर उसी रेट पर अच्छे रेट पर दे दे, तो आप अपने लेंडर के साथ रहें. फ़ायदा ज़ाहिर बात है आपको होगा और इसमें, लेकिन अगर आप दूसरे लेंडर के साथ जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा. लेकिन हम देखते ही हैं कि जहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है कितना आपकी बचत हो रही है. अगर आपकी बचत इतनी नहीं हो रही तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यू स्टे विद योर लेंडर एंड गेट इट डन फ्रॉम देयर. नंबर वन. नंबर टू, जो इस वक्त देखने में आ रहा है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो रीफाइनेंस करना चाह रहे हैं, उनको दिक्कत काफ़ी आ रही है, ख़ास तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को. तो उसके लिए हम आपके साथ गाय बगाय शेयर करते रहते हैं इंफॉर्मेशन नॉलेज, आप हमारे साथ रहिएगा और हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं. कमर्शियल ब्रेक के पास तरफ चलते हैं, फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं.
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाले का और एक घर खरीदने का. घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है. मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से. मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 416-427-8655. अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है. फोन कीजिए 416-427-8655 सैयद आसिफ रजा.
जी शाहन, और इसके साथ साथ आज हम, जैसे कि मैंने कहा कि प्रोग्राम हम आपको मॉर्गेज की इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे, और डिफरेंट भी हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी, आप कॉल भी कर सकते हैं कोई कोई सवाल हो. एक कॉलर है हमारे साथ, उनको हम लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम.
जी वालेकुम सलाम, आसिफ भाई क्या
हाल? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सर.
जी मुझे एक चीज बताइएगा, देखें बैंक का ऑप्शन तो हर किसी के पास मौजूद होता है, लेकिन आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक मॉर्गेज एजेंट या ब्रोकर की क्या जरूरत है और क्यों इम्पोर्टेंट है.
अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन. ये मसला भाई ये है कि मॉर्गेज ब्रोकर और मॉर्गेज एजेंट की क्या जरूरत है और क्यों है. बिल्कुल उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया. भाई मेरे पास क्रेडिट बहुत अच्छा है, मेरे पास इनकम बहुत अच्छी है, मेरे पास डाउन पेमेंट भी है, मैं बैंक में गया, TD RBC CIBC वहाँ बैठा, अच्छे अच्छे कमरे में अच्छी सी खातून आई, उनसे बातचीत करी, उन्होंने आपका जो है वो मॉर्गेज कर दिया और उन्होंने आपको रेट दे दिया जी एक. आपने कहा नहीं रेट तो बहुत है, उन्होंने क्रेडिट ब्यूरो भी आपका पुल कर लिया. और अब आप दूसरे बैंक के पास गए, अब आप क्या बार, एक तो आप बार बार अपना क्रेडिट पुल करा रहे हैं, उससे आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है, एक तो ये डिसएडवांटेज है. नंबर वन ये कि जब आप मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाते हैं या एजेंट के पास जाते हैं, तो उसके पास 50 लैंडर्स का एक्सेस होता है, 50, और वो एक साथ एक ही दफा क्रेडिट ब्यूरो खींच के जितने भी लैंडर्स को चाहे भेज सकता है. अप्रूवल के लिए, और वो कोई आपकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि अगर 5-6 अप्रूवल लेके बैठ गए आप, तो आपको वो बताता है कि देखें यहाँ पर सबसे लोएस्ट रेट है। हाँ, अंटिल अनलेस आपको बहुत ही मोहब्बत हो, इश्क हो टीडी बैंक से या आरबीसी से, तो वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपको अगर रेट और अपनी इंस्टॉलमेंट से मोहब्बत है कि आपको कम से कम रेट मिले, तो आपको बहुत से नॉन बैंकिंग यानी नॉन कमर्शियल बैंक्स जो लेंडर होते हैं, जैसे एम कैप है, प्रेजिडेंट चॉइस है, जिनकी ब्रांचलेस बैंकिंग होती है, उन लेंडर से आपको बहुत चीप रेट मिल सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो एक तो ये आपको फ़ायदा होता है, और फिर उसके अलावा आपका इंटरेस्ट देखा जाता है। जाहिर बात है बैंक सिर्फ अपना जो बैंकर होगा उसको कोई उस पर नहीं होता, वो अपना इंटरेस्ट देखकर आपको मशवरे देखकर आपके बैंक पे लेकर आ जाने की कोशिश करता है। और फिर जहाँ पर फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्लाइंट के पास के वो उस बैंक का क्राइटेरिया होता है, तो हमें पता है कि यार अगर ये यहाँ पे टीडी बैंक या आरबीसी जो है वो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट नहीं करता, मालूम है कि उसका जो मॉर्गेज की अमाउंट है वो 4 लाख हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे उसको सिर्फ भैया 3,80,500 मिल रहा है, और वो कहते हैं नहीं नहीं यार मुझे 15-20 हज़ार, ये बड़ी अमाउंट 15-20 हज़ार चाहिए, क्योंकि मेरा जो है अपने पास से मैं नहीं लगाना चाहता। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आपकी अदर इनकम एक्सेप्ट हो सकती है, जो आप फिर आप आरबीसी के पास गए या उसके पास गए, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें यार बेताशा हैं बेनिफिट्स, लेकिन अब फ़ोन पे जाहिर बात है एक लिमिटेशन होती है बताने की। तो आई वुड सजेस्ट जो भी भाई थे उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, और इसको गाय बगाए मेरा भी फ़र्ज बनता है कि आपको बताता रहूं कि आप वाकई किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं जिसके पास लेंडर के पास बहुत सारे एक्सेस हो लेंडर्स का, और वो एक ही क्रेडिट ब्यूरो आपकी पुल करे ताकि वो बहुत सारे लेंडर्स को भेज सके। ये ना हो कि आपने टीडी गए वहाँ रेट पसंद नहीं आया, या कुछ आपकी जो इनकम जो मॉर्गेज अमाउंट चाहिए थी वो आपको उतनी नहीं मिल रही, तो फिर आप आरबीसी गए वहाँ पे भी यही हुआ, फिर सीआईबीसी गए, फिर बीएमओ गए, हर जगह आप जाके क्रेडिट ब्यूरो पुल कराए चले जा रहे हैं। वो नहीं कर सकते कि वो एक ब्यूरो जहाँ पहले खींची हो वो इस्तेमाल कर सके, नहीं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका स्कोर नीचे ना गिरे उसकी वजह से। मजीद मालूमात के लिए आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं 416-427-8655। एक दफा फिर 5 साल का फिक्स रेट 2.69 और वेरिएबल रेट आपका चल रहा है 1.05% below prime। और प्राइम रेट की जो खबरें हैं 3.95 प्राइम रेट है और वो नीचे जा सकता है। उसके अलावा हम बहुत दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं नॉन रेजिडेंट जो कैनेडियन हैं अमेरिका में जॉब कर रहे हैं या दुबई में जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ की इनकम दिखाकर यहाँ पे 35% डाउन के ऊपर घर खरीद सकते हैं, उनको कैनेडियन इनकम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो न्यू इमिग्रेंट आए हुए हैं 6 महीने 8 महीने उनको हो गए हैं या 1 साल हो गया है 3 साल के अंडर, उनका जो पीआर कार्ड की जो लैंडिंग डेट है वो 3 ईयर्स के अंडर होनी चाहिए, वो भी 35% के ऊपर खरीद सकते हैं विद ज़ीरो इनकम के साथ। ज़ीरो है, उनको सिर्फ 1 साल की सेविंग्स दिखानी होती हैं कि 1 साल के पैसे उनके पास पड़े हुए हों, और जाहिर बात है जब वो यहाँ पर प्रोफेशनली आते हैं ज़्यादातर जो आते हैं और उनके आप बिजनेसमैन आते हैं जिनका काम करने का इरादा हो, तो वो लेंडर सिर्फ ये एसेस करता है कि हाँ इसको जॉब की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है फ्यूचर में। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं 416-427-8655। आइए एक कसीदे की तरफ चलते हैं शुजा रिजवी की आवाज़ में, क्योंकि मुहर्रम का महीना है और उसी के हवाले से ये कसीदा है, और फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं।
हुसैन क्या है न पूछ मेरा, हुसैन क्या है, हुसैन दिल है हुसैन जान है, हुसैन कुरान की जुबान है, हुसैन सजदा की सर समा है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या, हुसैन जख्मों भरी कहानी, हुसैन जख्मों भरी जबी है, हुसैन अजमत का आस्ता है, उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवान है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या, हुसैन ईमान की जुस्तजू है, हुसैन यज़दान की आबरू है, हुसैन तन्हा कर्बला में, हुसैन का जिक्र चार सू है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन लुट कर भी सुरखरु है, वो देखो ख्वाजा के दर में अभी, हुसैन तन्हा डटा हुआ है, न पूछ मेरा हुसैन क्या 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 है, हुसैन निखरा हुआ कलंदर, हुसैन बिफरा हुआ समंदर, हुसैन बसते दिलों के आगे, हुसैन उजड़े दिलों के अंदर, खुदा बख्शिश ही खैमागा है, हुसैन की सल्तनत के अंदर, हुसैन आकाश का वशी है, हुसैन धरती की आत्मा है, न पूछ मेरा हुसैन क्या 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 है।
समय प्रोग्राम सुन रहे हैं सैयद आसिफ रज़ा का, मुझसे रब्ते का नंबर है 416-427-8655। आइए एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और इस कमर्शियल के बाद फिर दोबारा प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं और आपका एक दो सवाल जो आए हुए थे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है, मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से, मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है, फोन कीजिए 416-427-8655 सैयद आसिफ रजा।
जी साहब, जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कहा कि दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ और भी शेयर करनी है। मॉर्गेज एजेंट का जो सवाल भी आया था उसके हवाले से एक और भी बात बताता चलूँ कि मॉर्गेज एजेंट के पास सिर्फ आपको फर्स्ट मॉर्गेज के लिए ही नहीं, आपको अगर कभी ज़रूरत आन पड़ती है सेकंड मॉर्गेज की या आपको एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट की, अगर आपको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं, उसके अलावा लीज होते हैं, ट्रकिंग लीज हो गई, ट्रक्स की लीज हो गई, इक्विपमेंट लीजिंग हो गई, वो भी उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो अंडर वन अम्ब्रेला आपको जितनी भी अपने फंड रेज बिजनेस स्टार्ट करनी है उसकी फ़ंड रेजिंग के लिए जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए वो आपको एक मॉर्गेज एजेंट, मॉर्गेज स्पेशलिस्ट आपको एक अच्छा मशवरा और आपको गाइड कर सकता है और कहाँ से मिल सकता है वो रिसोर्सेज, वो सब चीज़ें मॉर्गेज एजेंट और मॉर्गेज स्पेशलिस्ट के पास होती हैं। जो बैंक के पास जाएंगे तो एक ही बैंक के पास, तो उसके पास वही चीज़ें होंगी जो उसके पास एक लिमिटेशन के साथ होती हैं, और जाहिर बात है फिर वो वहीं पे उनके रेट्स जो भी हैं वो लेने हैं, तो लोग होता है माई वे और हाई वे वाला सिचुएशन होता है बैंक्स के साथ जाके। तो बहरहाल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सैयद आसिफ रज़ा का, मुझसे रब्ते का नंबर अगेन 416-427-8655। प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और एक कॉल हम सॉरी एक कॉल कह रहा हूँ, एक आपका यहाँ पे मैसेज आया हुआ है। इनका सवाल सिंपल सा है कि इनको प्रॉपर्टी इनकी जो है वो 1 मिलियन की है और ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और इनको सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, पहला मॉर्गेज इनका TD बैंक के साथ है। देखिए भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ए लेंडर का ढूंढ रहे हैं कि आपको जाहिर बात है जब TD बैंक के साथ आपका मॉर्गेज है तो आपने ज़रूर वहाँ पे भी एक्सप्लोर किया होगा, और आपको मगर नहीं किया तो आप कर लें और फिर आप हमें कॉल करें, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको वहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं दे रहे होंगे। तो जब ही आपने हमें भी टैक्स किया है या आप मॉर्गेज एजेंट को परसू करते हैं तो हमारा काम ये होता है कि हम देखेंगे कहाँ पर आपको आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपका क्रेडिट देखते हुए, आपकी इनकम को देखते हुए कि कहाँ मिल सकता है। पहली बात तो जो बड़े बैंक्स हैं वो 65% से ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं देते हैं, तो एक यहाँ पर आपके पास एक लिमिटेशन हो जाती है। अगर आपका 1 लाख रुपए का घर है और उस पर 65% ही मिल सकते हैं आपको 65%। अब $65 का मकसद ये होगा कि आप कहें यार मेरा तो $50 जो है वो तो पहला मॉर्गेज है, तब आपके पास कितने बचे भैया 15 रुपए। लेकिन आप कहें नहीं मुझे तो 30 रुपए चाहिए, मुझे तो $80 चाहिए और 50 मुझे, तो मुझे 30 रुपए चाहिए इस्तेमाल करने के लिए अपने काम के लिए। वो फिर हमारा काम होता है कि आपको ढूंढ के दें कि 80% तक आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट कहाँ तक हो सकती है। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद, जिन्होंने भी सवाल किया है तो हम आपको बता सकते हैं 416-427-8655। आइए कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनको भी लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम आसिफ भाई, आप कहाँ थे, बहुत मिस किया आपको।
जी बनारस, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का, और मैं यहीं पे था लेकिन मैं गया हुआ था दो हफ्ते के लिए तो इराक, तो मैं जी मुहर्रम के थी। जी हुकुम
भाई, पेश करता हूं।
जी पेश कीजिए।
कोई तूर के दामन में अब्बर के फलक कैसी, कोई तूर के दामन में अब्बर के फलक कैसी, मूसा ही नहीं जिंदा फिर जलवे की झलक कैसी, मूसा ही नहीं जिंदा फिर जलवे की झलक कैसी, और बुर्राक ना हो जिसपे शान मलक कैसी, बुर्राक ना हो जिसपे शान मलक कैसी, और हा के बिंदौरा को, हा के बिंदौरा को ताजी में फिदक कैसी, आके बिंदौरा को ताजी में फिदक कैसी। मैं बशीर रुबाई अर्ज करती, आपका प्रोग्राम बड़े मोहब्बत से सुनते हैं, अगले हफ्ते फिर पढ़ेंगे।
जरूर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सर,
थैंक यू वेरी मच।
सुन रहे हैं सैयद आसिफ रज़ा का, मुझसे रब्ते का नंबर है 416-427-8655। यहाँ पर मैं मुझे बहुत अरसे से ये लोग कह भी रहे थे और टैक्स भी आ रहे थे और लोगों की फरमाइश भी थी कि वो जो गवर्नमेंट ने 5 इंसेंटिव फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए दिए हैं, वो चाह रहे थे कि मैं उनको बड़ी आसान जबान में समझा दूं, तो मैं कोशिश करता हूं, आप इसको प्रोग्राम आप सुनते रहिए, कि सरकार ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने 5 इंसेंटिव निकाले हैं जो फर्स्ट टाइम घर खरीदना चाह रहे हैं, ये जहन में रखें। होता ये ज़्यादातर लोग हस्बैंड जो होते हैं वो अपने नाम पे घर लेते हैं, बीवी के नाम पे नहीं लेते, और समझते हैं उसके नाम पे अलग से लेंगे तो उसको फर्स्ट टाइम बायर का वो मिल जाएगा बेनिफिट। तो नहीं भैया, बीवी वो आपकी ये स्पाउस है और आपके नाम ऑलरेडी घर है, तो अपने आप वकील से चेक कर लें, रियल इस्टेट लॉयर से, कि वो बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। हाँ, आप के जो बेटा है, बेटी है, वो फर्स्ट टाइम अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो मिल सकता है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी पर हैं तो फिर नहीं मिल सकता। और समटाइम क्या होता है कि फादर के नाम घर होता है ऑलरेडी, उन्होंने बेचा, अब वो दूसरा घर बड़ा ले रहे हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो अपने बेटे को शामिल कर लेंगे, तो वो भी फर्स्ट टाइम बायर में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम बायर में सिर्फ वो लोग आएंगे जो फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, उनके साथ जो खरीद रहा है उसके ने भी पहले घर खरीदना ना हो, और जो खरीद रहा है वो भी पहली दफा ही खरीद रहा हो, उसके नाम कभी घर रहा ना हो, यानी घर उसके नाम कभी नहीं, टाइटल कोई रहा हो उसके नाम। तो फर्स्ट टाइम बायर के लिए जो 5 इंसेंटिव्स हैं वो ये, एक तो जो सबसे बड़ा इंसेंटिव जो वो दे रहे हैं कि जो शेयर्ड एक्विटी प्रोग्राम 5%, शेयर्ड एक्विटी प्रोग्राम, यानी अगर आप 5% लगा रहे हैं तो सरकार भी 5% आपको उस पर दे देगी खरीदने के लिए। सो आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं यार, क्योंकि मैं बड़ा ही, मैं खुद भी समझता नहीं हूँ इस तरह से जब तक मैं एग्जांपल ना दूं। 5 लाख का घर आप खरीद रहे हैं परचेज प्राइस, 5% डाउन दे रहे हैं, 25,000। अब 5% यानी 25,000 मजीद सरकार भी आपके लिए डाउन पेमेंट कर देगी। तो अगर अब ये प्रोग्राम जो नहीं था पहले, फर्स्ट टाइम बायर लेते थे तो उनका मॉर्गेज, अगर वो 5 लाख का घर खरीद रहे हैं, 25,000 डाउन दे रहे हैं, तो मॉर्गेज अमाउंट क्या हो गई, 475, लेकिन अब क्या हो जाएगी, 4.5, क्योंकि 25,000 और मजीद उनको मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो मंथली पेमेंट अगर हम रखें तो वो बनती थी 2260, 4.75 के ऊपर, प्लस आप वो CMSC इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह लगा लें, इसमें भी लगाएंगे, उसमें भी लगाएंगे, दोनों तरफ ही लगाएंगे, तो 2260 और इसमें बनेगी 2122, तो यानी आपको 138 रुपये महीने की आराम से सेविंग हो जाएगी टूवर्ड आपके मंथली इंस्टॉलमेंट के। अब रह गई बात कि आप, क्योंकि 50,000 रुपये आपने दे दिया, फिर एक और उनका इंसेंटिव है, आप कहते हैं नहीं मुझे तो 50,000 चाहिए, तो अप टू 10% तक जा सकते हैं इंसेंटिव के तौर पे, यानी 5 लाख का घर खरीदा, 25,000 आपने डाउन पेमेंट दिए, सरकार कितना देगी, 50,000, तो अब आपका मॉर्गेज अमाउंट क्या हो गया, 4,25,000। अब आपके ऊपर उसके हिसाब से CMSC लगेगी, तो आपका टोटल मॉर्गेज हो गया 436, और अब आपको किस्त देनी है 1,999। अब आपकी महीने की सेविंग कितनी हो रही है, $261, तो ये, और साल की सेविंग तकरीबन 3,132। लेकिन अब ये नहीं कि ये 50,000 जो आपने लिया है, 25,000 जो लिया है, बस ये गवर्नमेंट ने आपको अल्लाह वास्ते का दे दिया, आपको वापस नहीं करना, नहीं, आपको वापस करना है, ये आपको वापस करना है। कब करना है, जब आप घर बेचेंगे, या आप इसको दोबारा से जब आप तो खरीद रहे होंगे, तो ये पैसे आपको इंसेंटिव जो है, यू हैव टू पे बैक आफ्टर 25 ईयर्स, और व्हेन यू सेल द हाउस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी फेयर मार्केट वैल्यू, वेदर इट हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू, ये 5% उसी के हिसाब से आपको वापस करना है। फिर से सुन लें, आपको जो पैसे वापस करने हैं 5%, अभी तो 5 लाख का घर खरीद रहे ना, तो उन्होंने 5% दिया आपको, कन्फ्यूज कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, फिर से सुने आप, 5 लाख रुपए का मॉर्गेज आपको मिल रहा है, घर मिल रहा है, आज की वैल्यू 5 लाख, 25,000 आपने दिया, 25,000 सरकार ने दिया, आपका मॉर्गेज हो गया 4,50। 3 साल बाद आपके जहन में आया, भैया इसको बेच के मैं नया घर लेता हूँ। अब जब नया घर के आपने इसको 5 साल बाद देखा, 3 साल बाद देखा, तो 3 साल बाद तो उसकी वैल्यू हो गई $7,00,000। तो अब उसके हिसाब से आपको 5% उनको रिटर्न करने हैं हुकूमत को। हाँ, ये फ्री लंच नहीं है, यस, क्योंकि अब जब आप दूसरा घर लेंगे तो हो सकता है आपके पास डाउन पेमेंट ज्यादा हो, तो आपको दोबारा इंसेंटिव, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बायर होंगे नहीं जब आप दोबारा घर ले रहे होंगे, तो सिर्फ ओनली फर्स्ट टाइम बायर के लिए है। तो ये जहन में जरूर रख लीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन आपके जहन में हो तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं 416-427-8655। अच्छा, पांच इंसेंटिव में एक तो ये इंसेंटिव हो गया इक्विटी पार्टिसिपेशन, दूसरा जो है, अच्छा वो जो किस्त मैंने बताई थी वो 5 साल का रेट रखते हुए 2.69 और 25 साल की अमोर्टाइजेशन को जहन में रखिएगा। फिर आप आ जाइए आरआरएसपी होम बायर प्लान। पहले क्या था कि जो आरआरएसपी की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर बैंक ने $35,000 कर दिया, $35,000। अच्छा, कुछ लोग कॉल करना चाह रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा कि स्टूडियो पर कॉल करें 416-620-1778, यही है ना, हाँ 416-620-1778 पे कॉल करें अगर आपको कोई सवाल हो। अच्छा, आरआरएसपी का ये था कि उनकी जो लिमिट थी 25,000 थी, अब वो बढ़ा के उन्होंने 35,000 कर दिया। फर्स्ट टाइम होम बायर टैक्स क्रेडिट, क्वालिफाइंग फर्स्ट टाइम बायर कैन क्लेम पोर्शन ऑफ देयर होम परचेज पर्सनल टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर ऑफ परचेज ऑफसेट द क्लोजिंग कॉस्ट सच एज लीगल फीस एवरीथिंग 5,000 नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड अप टू 715 फेडरल टैक्स रिलीफ, 750 रुपये का आपको टैक्स रिलीफ मिल सकता है। चौथी जो बेनिफिट है वो है GST HST न्यू क्लोजिंग रिबेट, आपको फर्स्ट टाइम बायर को जो है वो HST अगर नया घर खरीद रहे हैं न्यू पर न्यू कंस्ट्रक्शन उस पर आपको HST का रिबेट मिल जाता है फॉर इंस्टेंट। उसके अलावा ग्रीन हाउस प्रोग्राम यानी होम बाय परचेज कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट होम जो इंश्योर्ड मॉर्गेजेस हैं अप टू 25% मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रीमियम रिफंड हो जाएगा आपको, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अगर आप अपने रियल एस्टेट एजेंट के पास जाएं उसको बोलें भैया मुझे ग्रीन हाउस प्रोग्राम वाला जो एनर्जी एफिशिएंट होम है वो दिलवाओ ताकि जो मैं मॉर्गेज इंश्योरेंस प्रीमियम CMSE को दे रहा हूँ तो उसका 25% मेरी जेब में आ जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद 416-427-8655। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं।
इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घरवाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए मॉर्गेज चाहिए होता है, मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा से, मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा, फोन नंबर है 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है, फोन कीजिए 416-427-8655 सैयद आसिफ रजा।
सामिन आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सैयद आसिफ रजा का, मुझसे रब्ते का नंबर है 416-427-8655। आइए, क्योंकि मुहर्रम का महीना है और उसी के हवाले से एक और फरमाइश है। ये मीर हसन मीर की आवाज़ में ये इमाम, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कॉलर की तरफ, उनकी कॉल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी भाई साहब, रजा साहब एक चीज़ ही पूछनी है, जो न्यू बायर इंसेंटिव का जो आप ये बता रहे हैं फर्स्ट टाइम का,
जी
इसमें अगर आपकी डाउन पेमेंट आपने 5% बताई, अगर आप 10% करते हैं और 10% भी क्या गवर्नमेंट मैच करेगी उसको कि ताकि आपको CMSE ना देना पड़े?
नहीं, वो नहीं करेगी। आप 5% डाउन दे सकते हैं और 10% आपको वो इंसेंटिव दे सकते हैं,
मतलब 20 पर आप उसको 10 और 10 नहीं कर सकते।
नहीं।
10 आप दें और 10
आप, फिर वो तो आप उस पे CMSE के ब्रैकेट से निकल गए ना सर।
जी जी,
तो टेक्निकली तो आप अगर 10% भी दे रहे हैं तो वो 5 तो आप 10% ही दे रहे हैं ना, बाकी तो गवर्नमेंट दे रही है, तो उनके पास है उनके
तो कर सकते हैं 20%
नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
अच्छा, और इसके ऊपर कैप भी है ना गालिबन की 5 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी ना हो?
मस्ट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग यू मेंशन, 5 लाख से ऊपर की नहीं, इसीलिए मैंने 5 लाख की प्रॉपर्टी की ही एग्जांपल ली थी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर।
थैंक यू सर। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई।
वालेकुम सलाम
आसिफ भाई, ये बताइए कि मतलब सारी इंसेंटिव लेके मैं मेरा बेटा जो है $1,00,000 कमा रहा है, ठीक है, और मैं प्रॉपर्टी लेके रेंट पे दे सकता है?
वो प्रॉपर्टी लेके रेंट पे, होता ये है कि अगर आपका बेटा तो वो ओनर ओनर होम ओनर ऑक्यूपाइड होना चाहिए, यानी वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होना चाहिए। लेकिन सम टाइम ये होता है कि आप उस घर पे गए और वहाँ पर आपको कोई चीज़ एलर्जीज हो गई और आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको घर को छोड़ सकते हैं और उसको आप रेंट पे लगा सकते हैं और अपने बैंक को आप इत्तला कर सकते हैं।
नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम बायर से के इंसेंटिव में मकान लिया,
तो HST रिबेट उसका सवाल, क्वेश्चन का सवाल जो है वो नहीं नहीं कर सकते आप। अगर आप रेंट के लिए लेना चाह रहे हैं 5% 10% के साथ और आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं कि मैं रेंट पे दूंगा राइट अवे, तो नो।
अच्छा, मतलब है कि मुझे कागजी फाइल में डालना पड़ेगा ड्यू टू दिस रीजन आई एम नॉट एबल टू लिव इन दिस हाउस।
वो तो वही मैंने आपको बताया ना कि होता है ये मतलब कागजी नहीं है, बहुत दफा ऐसा होता है लोग जाते हैं वहाँ पे, उनको मोल्ड होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ इश्यू होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जरूरी नहीं है कि ये हो, तो लोग उसको उस वक्त सिचुएशन में तो रेंट पे जा सकता है वो बैंक को बता के। लेकिन अगर आप इनिशियली बता देंगे कि मैं ले ही रेंट की नियत से रहा हूँ, तो फिर नहीं
बताते ही नहीं है, हम बताते ही नहीं
है। ये तो अब आपकी मर्जी है सर, मैं तो आपको लीगल पे बता दिया और आपको ठीक है सर, थैंक यू जी। एक और कॉलर है जी, सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम जी, सब क्या हाल है?
अल्लाह का शुक्र सर, वालेकुम।
सर जी, मेरा जरा हटके सवाल है कि ये जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरेबिया और अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है कि सऊदीया से इजाजत ले रहा है, सिर्फ तू मुझे इजाजत दे दे तो मैं हमला ईरान पे कर दूं
जी,
चाहे उसका वो जो तेल तो जला ही है बल्कि पानी जला है उनका जो मिसल आए हैं, तो ईरान कह रहा है मैंने किया, वो कह रहा है हमारे पास सबूत है। अब इमरान खान ने पहले उनको सऊदी अरेबिया गया था और कतर का भी आया था, उसको बोला उसने कि भाई हमारी हमायत करो, मुसलमान कश्मीर जो जल रहा है तो उसके लिए, लेकिन उन्होंने कहा ये तुम्हारा मसला है। अब इमरान खान क्या कर रहा है कि अपनी चार दीवारी में जल से जुलूस बला बला सारी उसकी पार्टी बला बला कर रही है। अब यूएनओ में अगर जाके कुछ बोलेगा भी, अगर यूएनओ में इसका बिल पास नहीं होता या कश्मीरी उधर से जलते रहेंगे मरते रहेंगे इससे लूटती रहेंगी, तो इमरान खान क्या करेगा, उसका हल क्या, उसके बाद क्या जंग करेगा या नहीं करेगा? लेकिन इमरान खान को बिल्कुल हमायत का सऊदी अरेबिया के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जवाब ले चुका है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, ये आपका अपना मसला है। लेकिन इमरान खान ने ऐलान किया कल कि भाई हम तुम्हारे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्या इनकी मुनाफकाना पॉलिसी है, इनको शर्म नहीं आती कि जो जो लोग आपके साथ नहीं है, अब उनके घर में आग लगी है सिर्फ, तो उसी वक्त ऐलान कर दिया हम तुम्हारे साथ हैं, कश्मीर के मसले में नहीं है, यमन के मसले में नहीं है। अमेरिका कहता है जरा बस तू हुक्म कर, अमेरिका की सैटेलाइट ने ये किया कि भाई मिसाइल जो है वो ईरान से आया है, उसकी जो सैटेलाइट है वो कश्मीर में सैटेलाइट फिट नहीं है, उसका नहीं वो बता सकता। और दूसरा, अगर सऊदीया को इतना है ना मुसलमानों से या मुसलमानों को इतना है कि हम सऊदीया को बचा लें, तो सऊदीया कहे ना अमेरिका को कश्मीर का मसला जल्दी हल कर, अब डेढ़ महीना हो रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अगर दो चार महीने साल दो साल हो जाएंगे ना, कश्मीरी तो मर जाएंगे, वो तो भूखे ही मर जाएंगे। ये क्या इनका कार्य है, मुझे समझ नहीं आ रही।
आपके
जितने भी इमरान के
जी, मैं इमरान के इमरान खान का बता दूं सर, इमरान खान आपकी बात सही है, क्योंकि जो इमरान खान ने बयान दिया था OIC की जो मीटिंग हुई थी, उसमें पहली दफ़ा किसी पाकिस्तान के सरबराह ने पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर बात की थी। इसको तो आप मानते हैं ना, कभी भी आप लगा लें बेनज़ीर साहिबा के कितने दौर गुजरे, नवाज शरीफ साहब के कितने दौर गुजरे, कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर OIC के अंदर बात नहीं की थी। ये इमरान खान पहला था जिसने बात की थी, नंबर वन। नंबर टू, ये चीज़ की जो आपने बात अभी उठाई है, बहुत लीगल और लेजिट आपका पॉइंट है कि, और बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि हमारे जो मुसलमान कंट्रीज़ के जो लीडर हजरात हैं वो इस चीज़ को नहीं देख रहे कि जो कश्मीर, एक्चुअली इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री थी और है, और हम बड़े फख्र से कहते थे कि पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ इंडिया में है। लेकिन इस 370 के बाद की शक के बाद जो मोदी साहब ने किया है वो डेमोक्रेसी को उन्हीं ने ठेस पहुंचाई है। अपने लोग, उनके खुद इंडिया के लोग कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे इंडियन दोस्त हैं वो खुद इसके ऊपर नाला हैं और शर्मिंदा हैं कि ये जो मोदी ने हरकत करी है, और उसका कोई वहाँ पे, अच्छा चलो भाई तुमने कर दिया तो कश्मीर के अंदर तुमने मीडिया क्यों बंद करके रख दिया, इंटरनेट क्यों बंद करके रख दिया, क्या दिल में चोर है तुम्हारे, क्या खराबी कुछ कर रहे हो वहाँ पर, अगर अच्छाई के लिए ला रहे हो तो सबको दिखाओ क्या कर रहे हो। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और सऊदी अरब तो हम जानते हैं भाई कि उनके जो जो लोग हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हुक्मरान हैं वो जो उन्हीं से हमें जो है वो प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से इस वक्त हम ये देख रहे हैं। ये आपकी बात बड़ी अच्छी है। और आइए इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए हम अब चलते हैं, हमारे साथ एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हर साल हमारे साथ होते हैं रेडियो पर, और हम उनके बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और वो यहाँ पर क्या पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे इत्तेहाद बैल मुस्लिमीन के लिए उनको और इनके भाई को दाई समझा जाता है और बहुत कोशिश करते रहते हैं, और इस वक्त अमेरिका तशरीफ़ लाए हैं मौलाना सैयद मोहम्मद और नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना साहब, आपने अभी, आप जाहिर बात है आप भी लाइन पे थे, हमने लिया हुआ था और इस्तफाक से सवाल भी आ गया, उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। इस वक्त जो पाकिस्तान अपना जो स्टैंड है इस मामले में क्या लेगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अकल परेशान है, ईरान और हूतीज वो इतना बड़ा अटैक, ड्रोन अटैक वो भी आके कर दें, मतलब किसी की अकल में नहीं आता। मतलब ये ऐसा है कि आप बच्चों को टॉफी खिला देंगे और भाई यकीन करो ये है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं जी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो भाई साहब अभी कालर ने गुफ्तगू फरमाई, बेशक एक दर्द दिल है और एक हर मुसलमान का और पाकिस्तानी का या इंसान जो भी इंसानियत का दर्द रखता है उसकी उन्होंने गोया नुमाइंदगी फरमाई, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। गुजारिश ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई मुनाफिकाना सूरत हाल है पूरी दुनिया की, और मुस्लिम हुक्मरानों को, खास तौर पे सऊदी हुक्मरानों को और आपके पाकिस्तानी हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि जैसे कि 9/11 के हवाले से खदशात और मामलात दुनिया के सामने हैं। ये जाहिर है कि जो बात सामने आ रही है, ईरान कह रहा है कि हमने नहीं किया, उधर से जो है वो कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने किया है, और बहाने तलाश कर रहे हैं कि किसी सूरत से ये जो है वो ईरान पे हमला करें, और इस तरह से एक खत्ते में जो है वो, बल्कि मैं कहूंगा खत्ते में नहीं होगा, अगर ये खुदा न खास्ता जंग चलती है तो फिर ये एक आलमी जंग हो जाएगी और ये एक दुनिया को खत्म करने वाली बात हो जाएगी, अल्लाह रहम करे। इसलिए अकल के नाखून लेने चाहिए, खासतौर पर सऊदी हुक्मरानों को, और सोचना चाहिए कि बैन अलाकवामी साजिशें जो हैं वो क्या हो रही हैं मुस्लिम उम्मा के खिलाफ, या मुसलमानों के जो असासे हैं, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो खलीज में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, कश्मीर में हो। बदकिस्मती से हमारे मुस्लिम हुक्मरान अपनी अपनी सीटों और अपनी अपनी हुकूमतों की वजह से उनको दावाम देने के लिए जो है वो दूरंदेशी का मुजाहरा नहीं करते, वरना इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत गंभीर है और हमें अकल के नाखून लेने चाहिए इस सूरत हाल में।
बिल्कुल, एक कॉलर हम ले लेते हैं पहले और उनका सवाल देख लें क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब बोल रहे हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।
जी सर, कौन साहब?
हमजादी सरदारी बोल रहा हूँ।
जी सरदारी साहब,
मेरा सवाल है अल्लामा साहब सही, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।
अस्सलाम वालेकुम जी।
दो वजीर खारजा, एक यूएई का और एक सऊदी अरब का आए, और बड़ी हमारे शाह महमूद कुरैशी ने डेंगे मारी के बस अब कश्मीर के मामले पे मुत्तफिक, और जाते जाते उन्होंने ये कहा पीटीआई की गवर्नमेंट को और हमारे वजीर खारजा को कि मेहरबानी फरमा के हमारी हैवी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर का जो मसला है, कश्मीर में जो ह्यूमन राइट की वॉयलेशन हो रही है, कश्मीर में जो लोगों को इस तरह से 80 लाख लोगों को उन्होंने ह्यूमिलेट करके रख दिया है, उसको मुस्लिम उम्मा का मसला नहीं बनाए। तो भाई ये यूएई वाले कौन है, सऊदीया वाले कौन है, ये आप जानते हैं। हमला यमन के होती वगैरह पे, क्योंकि यमन और सऊदी की जंग हो रही है, तो ये अमेरिका बहादुर उनको कह रहा है कि जी ईरान ने हमला कर दिया। ईरान को फलस्तीन में हमला होता हुआ नजर नहीं आता, कश्मीर में हमला होता नजर नहीं आता, जहां जहां मजलूमों पे हमले होते हैं वो अमेरिका को कुछ नहीं नजर आता, आले सऊद के लिए सब कुछ नजर आ
गया। जी तो आपका सवाल ये है कि आले सऊद के लिए सब कुछ नजर आ गया जो हमला हुआ, लेकिन और जगह पर कुछ
बिजनेस पार्टनर है आले सऊद यहूदियों के और नुसारों के।
थैंक यू जी।
जी भाई साहब ने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया कि वो बिजनेस पार्टनर हैं आले सऊद हों या तो जाहिर है, तो जब बिजनेस पार्टनर हैं तो उनको अपने बिजनेस अजीज है, ना उनको कश्मीर अजीज है, ना उनको फलस्तीन अजीज है, ना उनको गोया यमन अजीज है, ना उनको ईरान अजीज है, ना कोई और मजलूम कौम अजीज है, उनको अपना मफाद अजीज है। और इन्हें अकल के नाखून लेना चाहिए, कुरान मजीद वाज़े तौर पर हुक्म देता है कि ये यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब ये लोग जो जाहिर के कुरान मजीद को अपनी किताब भी मानते हैं, जाहरी तौर पर कलमा भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम भी मानते हैं, और फिर कुरान मजीद की वाजे ऐलान के बावजूद यहूद और नसारा को इन्होंने दोस्त बनाया हुआ है, इन्होंने दोस्त बनाया हुआ है और वो इनके दुश्मन है कुरान की रूह से।
हाँ, तो लेकिन वो मौलाना साहब उसके लिए ये भी था कि वो आयत उस वक्त आई थी जब जब एक लड़ाई या गजवा या जंग हो रही थी, तो उस वक्त कहा गया था।
देखें कुरान मजीद की जो आयात है ना
जी,
वो हर दौर के लिए है, सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला होता है कि वो देखें अल्लाह के जो अहकाम है ना वो किसी एक दौर के लिए नहीं है। ये सही है कि कुछ आयात मौके और मुनासिबत के लिहाज से नाजिल हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह उसमें इन ब्रेकेट तो आयत में दे सकता था ना कि ये सिर्फ इस मामले के लिए है, ये ट्रंप के दौर के लिए या मोहम्मद बिन सुलेमान के दौर के लिए आयत नहीं है ये। यानी ये जो तावील करते हैं ना इस बात की कि ये आयत
समझना चाह रहा हूँ कि ये जो आयत आई थी दोस्त नहीं है, ये आई थी जब आप किसी मकसद के लिए जंग कर रहे। वैसे तो हम किसी दोस्त बना सकते हैं, कोई दोस्त हमारा है वो मेरा दोस्त है, अगर कोई
नहीं,
कोई
समझ रहा हूँ।
हाँ वो लोग एक्चुअली मैं रेडियो पे वो समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आयत, हाँ जी,
वो यहूद और नसारा उस माना में नहीं, देखें एक आम यहूदी है, एक आम ईसाई है, एक आम नसारा है, और वो आपके माशरती दोस्त है, वो आपके साथ उठता है बैठता है, वो एक पड़ोसी के हुकूक की बात अलहदा है, मुल्क के शहरी की बात अलहदा है, आपके जो एक दूसरे के साथ रहन सहन के मामलात हैं वो एक अलहदा मसला है। लेकिन जो ये आयत इस मौके पर सऊदी अरब और ट्रंप और अमरीका और ये बर्तानिया और ये जितने भी ऐसे पॉलिसी मेकर हैं,
जी,
आप कहिए आवाम की बात नहीं हो रही, आम आवाम की बात नहीं,
मैं वही एक्चुअली लोग गलत समझ जाते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा उसको आपसे बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये मौलाना साहब कि हम लोग तो जो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया के खास तौर पर जो लोग हैं, हम तो इस चीज़ को और समझ सकते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल वाला, तो हाँ वो हमारे दोस्त नहीं थे, तो ये उस जुमरे में बात हो रही है कि वो हमारे दोस्त
हैं। हाँ। आप देखें कश्मीर का मसला किसने अटकाया है,
जी जी जी,
कश्मीर का मसला जो आजकल अटका हुआ 70 साल से,
जी जी,
इसको किसने अटकाया, ये वही मास्टर माइंड यहूद नसारा थे ना,
जी यही एक्चुअली वही लड़ाना चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान को, जो इंडिया में इस वक्त भी हो रहा है, तो वो ये समझने की बात है, लोगों के जहनों में आने की बात है। वैसे आप फ्रेंडशिप रख सकते हैं, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं, ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
दुश्मन अल्लाह है मोहम्मद, दुश्मन अल्लाह।
अच्छा एक और कॉलर है हमारे साथ, हेलो, इनकी कॉल, ये इनकी कॉल तो ये तो बेचारे ज़हनी तौर पे परेशान है जी। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अलामा साहब, मेरी नाकस अकल ये कह रही है कि अमेरिका जो है वो तो काफी दिनों से ईरान के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, कभी वो जहर ये, अब वो ये कर रहा है कि पैसे भी मेरे बच जाए, हम जंग लड़ेंगे ईरान के साथ और पैसे लेके इनसे मिसाइलों के, जहाजों के, सऊदी अरब के। और ये वही करना चाह रहे हैं कि जो मिसाइल वहां से आ गया और हम तुम्हें हमें इजाजत दे दो और बस सारा खर्चा तुम्हें बर्दाश्त करोगे, ऐसा तो नहीं है कहीं
जी?
नहीं सही कह रहे हैं, ये भी आपकी सोच जो है ये किसी हद तक इस पे जाहिर है कि यही कुछ समझ में आ रही है बात। ये उसे तो आप देखें, वो मोहम्मद बिन सलमान को बैठा हुआ ट्रंप जो है वो बच्चों के खिलौने की तरह वो दिखा रहा है कि ये देखो ये मिसाइल है हमारे पास, ये मिसाइल है, ये खरीद लो, ये ले लो, ये आपने देखा होगा वो क्लिप। तो उसके अंदर वो तो चाहते ही यही है कि जनाब अगर हमारे ऊपर उनका कोई कर्जा है तो हम इस तरह से उसको वो खत्म कर दें और इनको लड़ा जुड़ा के दे। ये पुरानी पॉलिसी है, जाहिर है कि इस पे अमल हो रहा है
जी। बास आप थोड़ी बात को और आगे बढ़ाते हैं और इसी हवाले से मुहर्रम अल हवाल के हवाले से कुछ सवाल भी थे कि ये जो मुहर्रम के जैसे ही मुहर्रम आता है, क्योंकि बहुत से लोगों में जहनों में सवाल भी आने लगते हैं कि अहले तशी हजरात जो इमाम हुसैन का ये जो जुलूस है और मातम है और अलम है, ताजिया है, ये क्यों, मतलब क्या वजह क्या है इसको करने की? घर पे बैठ के भी कर सकते हैं कि नहीं जी?
असल में देखिए आसिफ भाई, ये तो एक 1400 साल से ये चल रहे हैं मसाइल, लोग जो हैं वो फितरत के खिलाफ बात करते हैं।
ठीक है,
देखिए कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है तो लोग मातम कर रहे हैं या नहीं? वहाँ उनके मातम की हम तायद कर रहे हैं या नहीं?
बिल्कुल।
वो जो औरतें सीना को भी कर रही हैं तो हम भी उनकी हिमायत कर रहे हैं कि नहीं?
बिल्कुल।
कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह को पुकारना या किसी को जोर दे के या पुकार के या चीख के या गुस्से से बात करना पसंद नहीं है सिवाय इसके कि किसी मजलूम पर बात की जाए।
ठीक।
तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को मजलूम की आवाज में आवाज मिलाना पसंद है।
क्या बात?
मजलूम के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है जालिम की मजम्मत में तो वो अल्लाह को पसंद है। अब आवाज उठाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कोई प्ले कार्ड उठा के आवाज उठाता है, कोई सीने पे हाथ मार के आवाज बुलंद करता है, कोई मिसाल के तौर पे किसी अंदाज से अपने जुल्म के खिलाफ मुजाहरे का इजहार करता है। तो इसमें ये 1400 साल पुराने मसाइल हैं, ये वो लोग अब तो देखें मीडिया और इंटरनेट इतना वसी हो गया है कि अब जो दकियानूस टाइप के लोग हैं या जो कह लीजिए कि कम जहन या मतलब है कि जिनको सिर्फ एक लकीर के फकीर हैं, वो लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि जनाब मातम क्या है और रोना क्या है और नौहा क्या है और गलताजियत क्या है और अलम क्या है। ये तो अब मीडिया ने सब कुछ सादिक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को के साथी थे 72 और उधर लाखों की तादाद में फौज थी। 1400 साल हो गए इस वाके को, कितने वाकयात हमारी तारीख में गुजरे हैं इंडो पाक के, कितने वाकयात हैं अरब के, कितने वाकयात हैं अजम के, कितने वाकयात हैं आपके यूरोपी ममालिक के, कितने जंग अव्वल जंग दोम कितनी जंगे हुई, लेकिन उनको सिर्फ एक यौम के तौर पर याद कर लिया जाता है कि साहब फला तारीख को फला वाकया हुआ था। लेकिन आज भी 1400 साल के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो कह लीजिए कि अलमनाक वाकया था, इसको आज हर मुनसिफ मिजाज याद करता है, हर वो शख्स याद करता है कि जो जिसके दिल में दर्द है। तो ये बच्चों वाले सवालात हैं जो अब 1400 साल से अब इनको खत्म हो जाना चाहिए।
बहुत अच्छी बात की वाकई। और इसका और इसको ये प्रोटेस्ट है जो एक टेररिज्म हुआ 1400 साल पहले यजीद ने किया और वो प्रोटेस्ट चलता है, ज़ाहिर बात है वो उस वक्त से स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनको लेते हैं। जी सलाम अलैकुम, कौन साहब?
जी सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
जी मैं मियां बोल रहा हूँ।
जी मियां साहब
जनाब वेलकम बैक, आपका टूर अच्छा रहा, आपकी आवाज सुनी,
बहुत शुक्रिया।
क्वेश्चन ये है
जी
के ये आपने कोई ऐसा एजेंडा क्यों नहीं, इस्लामी मुल्क जितने भी हैं कोई कॉन्फ्रेंस नाम रखे, उसका एजेंडा रखे और पाकिस्तान में या किसी कंट्री में सारे सरबरा मिल बैठे और उसमें इसकी पूरी मतलब बहस करें और उसके बाद फिर ये कंटिन्यूस रखें कि जी आज यहाँ हुई है, अगले मंथ कतर में होगी, अगले मंथ सऊदीया में होगी, फिर ईरान में होगी, फिर पाकिस्तान में होगी। तो दे कीप इन टच। मेरा क्वेश्चन ये है, कोई इनके पास आंसर है ऐसा कि अगर ऐसा मिल बैठे तो
बहुत अच्छी बात हो,
बन जाए और کچھ نہ کچھ ان کو کوئی حاصل ہو سکے.
آپ نے میاں صاحب آئیڈیل بات کی ہے, اللہ کرے ایسا کچھ ہو جائے ہم سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور مسئلوں کے حل نکال سکیں. بہت اچھی بات کی آپ نے, تھینک یو میاں صاحب, تھینک یو. جی مولانا صاحب, وہ آئی سی میرا خیال ہے اسی لیے بنی تھی.
آپ تو بھائی صاحب کی بہت اعلیٰ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب مسلم حکمرانوں میں کسی کو یہ ضرورت ہو کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں اور پھر بات کریں.
جی
آپ دیکھیں نا, اگر وہ ایسا اجلاس بھی بلاتے ہیں اور مسلم حکمرانوں کو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس ملک میں, تو ایجنڈا تو وہ ہونا کہ جو اس زمانے کا ہو جب بھٹو کے دور کا تھا یا یاسر عرفات کے دور کا تھا یا مثال کے طور پر لیبیا کے
وہ تو مولانا ایران کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا ابھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے.
جی جب نہیں کر سکتا تو یہ جو اجلاس ہوں گے وہ سوائے کھانے پینے کے اور
پیسہ. مولانا صاحب تشنگی رہ گئی اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اگلے ہفتے آپ کو پھر سے تکلیف دیں اس پروگرام میں تشریف لانے کی اور اس میں ہم اور آپ سے کچھ چیزیں سیکھ سکیں اور باتیں ہوں. اور میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ رہنے کا. مولانا صاحب ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے, پھر انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ مولانا اور نقوی صاحب, اور ان کا نمبر میں آپ کو بتاتا چلوں, 832-903-2777 یہاں پہ آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست آپ سے زیادہ چاہتا ہے. میرا نام سید آصف رضا, مجھ سے رابطے کا نمبر ہے 416-427-8655. آئیے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, پروگرام آپ سنتے رہیے گا. آئیے ندیم سرور کی آواز میں ایک نوحہ سنتے ہیں اور آپ سے زیادہ چاہتے ہیں. خدا حافظ, اللہ حافظ و ناصر.
اے حر کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین, بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین. اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا, اے حر حسین مل گئے رب تجھ کو مل گیا. کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اسے نہیں ملا جسے تو, جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا, تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا, تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا. بس یا حسین, بس یا حسین, بس یا حسین, بس یا حسین. یہ بس حسین کی عطا, یہ بس حسین کا جگر, حسین کا جگر جو بہ دیا وہ معتبر, جو دے دیا تو سارا گھر,
دے دیا تو سارا گھر.
کرم حسین کا کرم کسی پہ ہو گیا اگر, ملے کسی کو بالوں پر کسی کو مل گئے پسر. بنا دیا بنا دیا اسے جو ایک بار مل گیا,
تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا, تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا. بس یا حسین, بس یا حسین, بس یا حسین, بس یا حسین.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Adnan Bashir of Cityscape and Buzzmax.ca present Living Legend Ustad Rohak Fateh Ali Khan live in concert. On Friday, October 18th, 2019, at Roy Thompson Hall, Toronto. For tickets and sponsorships, call 416-989-8555 or visit roythompsonhall.com. Another mega event by Digital Media Limited and Hum Television Network.
نہ خرید فرنیچر راستے سے, نہ لینا سوٹ ڈالر مارٹ سے, نہ پینا باسی کافی اچھا لگتا نہیں, نہ بناؤ انٹرن کو سی ای او, نہ کھلاؤ فاسٹ فوڈ کلائنٹ کو, نہ لگاؤ مسکا باس کو, اچھا لگتا نہیں. ہمیں ملتا ہے وہی جو ہم چاہتے, یوز اوریجنل ایچ پی ٹونر. har chinta hogi dur.
100% reliable, environmentally responsible. Always trust the original HP toner.
कुछ पल इंसान की जिंदगी में पहली बार आते हैं, इसीलिए आप सिर्फ उन लम्हों को जिए, बाकी हम पर छोड़ दें। 20 साल का वसी तजर्बा लिए हम हैं वुडबाइन बैंक्वेट एंड कन्वेंशनल हॉल, शानदार इंटीरियर, लार्ज हॉल्स, स्टेट ऑफ द आर्ट गेस्ट रूम्स और एक्सपर्ट शेफ्स का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। बनाए आपके हर लम्हे को हमेशा यादगार। वुडबाइन बैंक्वेट हॉल, 30 वाइस रिजेंट बुलेवार्ड, टोरंटो। बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए अभी कॉल करें 416-743-0003।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेने ले आज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
आप सुन रहे हैं WTR 770 AM साउथ ओवर्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारे रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com।